ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। बांग्लादेश इस समय जबरदस्त हिंसा की चपेट में है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर देश छोड़ दिया है। बांग्लादेशी मीडिया ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका स्थित आवास गणभवन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के घुस जाने के बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने घोषणा की है कि देश में अब एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। इसके लिए वे राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। उन्होंने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों को धैर्य से काम लेना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने ढाका के धानमंडी इलाके में गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल के आवास पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। एयर इंडिया ने तत्काल प्रभाव से ढाका आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों को ढाका से आने जाने के लिए कन्फर्म टिकट बुकिंग में सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने यात्रियों को उड़ान के समय में बदलाव और कैंसिलेशन शुल्क में एक बार छूट देने की सुविधा भी दी है। यात्री और अधिक सूचना के लिए एयर इंडिया के 2400 घंटे कार्यरत संपर्क केंद्र के फोन नंबर 011-6939-9933 पर फोन कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि बांग्लादेश सीमा पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति की कड़ी निगरानी की जा रही है। अभी मिले समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश की ताजा स्थिति से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए काम करना जारी रखेगी और आने वाले समय में राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 5 वर्ष पहले आज ही के दिन 5 अगस्त को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने का निर्णय लिया था। यह निर्णय राष्ट्र के इतिहास में अविस्मरणीय रहा। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति और समृद्धि के नए युग की शुरूआत का समय था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल फिजी की राजधानी सुवा पहुंचेंगी और वहां आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सुवा पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सैन्य बल द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ग्रैंड पैसिफिक होटल में उनका पारंपरिक स्वागत भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति विलियम कांटोनिवेरे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और बाद में फिजी संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के प्रधानमंत्री सितिविनु राबेका के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्य पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सरकार बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा के योगदान से भारत की बिजली क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार को विश्व स्तर की सोच रखनी चाहिए और इसका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर करना चाहिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य आज 5वें दिन भी जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। आज सुबह मौसम साफ होते ही सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम ने मजबूत रोमानिया को 3-2 से हराकर इतिहास रचते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से कांस्य पदक की उम्मीद थी, लेकिन वे मलेशिया की ली जी जिया से पराजित होकर यह मौका भी चूक गए। निशानेबाजी में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में 1 अंक से कांस्य पदक जीतने का मौका चूक गए। एथलेटिक्स में आज देर रात 3000 मीटर स्टीपल चेज अविनाश सावले अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।